ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆದರಣೀಯ ಛೋಟೇಲಾಲ್ ಭಾಯಿಜಿ ಮಂಜಾಸಿನ್, ಆಪ್ಕಾ ಇಸ್ ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ ಮೇ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೈ. ಸಬ್ ಕರ್ತಕ್ ಧ್ವನಿ ಸೆ ಭಾಯಿಜಿ ಕಾ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರೆಂಗೆ. ಛೋಟೇಲಾಲ್ ಭಾಯಿಜಿ ಕಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ. ಭಾಯಿಜಿ ಜ್ಞಾನ ಮೇ 40 ವರ್ಷ ಸೆ ಚಲ್ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಮಧುಬನ್ ಮೇ 35 ಇಯರ್ ಸೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಸೇವಾಯ ದೇ ರಹೆ ಹೈ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಔರ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬನಾನೆ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಆಪ್ಕೊ ಜ್ಞಾನ ಮಿಲಾ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಹರಿಯಾಣಾ ಸೆ ಔರ್ ವಹಿ ಸೆ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಸಮರ್ಪಿತ ಹುಯೆ. ಭಾರತ ಔರ್ ನೇಪಾಲ್ ಮೇ ಬಾಬಾ ನೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನೋ ಪರ್ ಯೋಗ ಭಟ್ಟಿ ಕರಾನೆ ಕಿ ಸೇವಾ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಕಿ ಹೈ. ಆಪ್ಕಾ ಲೌಕಿಕ ಘರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಅಲ್ವರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ದಾರೋದಾ ಹೈ. ಲೌಕಿಕ ಘರ್ ಮೇ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ಚಲ್ತಿ ಹೈ. ಲೌಕಿಕ ಪರಿವಾರ ಮೇ 4 ಬಹನೆ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಚಲ್ತಿ ಹೈ ಔರ್ 2 ಬಹನೋ ಕೆ ಘರೋ ಮೇ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ಚಲ್ತಿ ಹೈ ತಥಾ 3 ಲೌಕಿಕ ಬಹನೋ ಕಿ 5 ಲಡ್ಕಿಯಾ ಬಾಬಾ ಕೆ ಸೆಂಟರೋ ಪರ್ ಸೇವಾ ಮೇ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೈ. ಆಪ್ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ಅನುಭವಿ ರತನ್ ಆತ್ಮ, ಹಮ್ ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ ಕಿ ಓರ್ ಸೆ ಆಪ್ಕೋ ನಿವೇದನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಆಪ್ಕೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಸೆ ಹಮ್ ಈಶ್ವರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಕೋ ಭರ್ಪೂರ್ ಕರೆಂಗೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ್ ಬಾಬಾ ಹಮ್ ಸಬ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಏಕ್ ಐಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ದೇಖನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ जिसके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सके. क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होनी है. और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की अथवा फरिश्ते बनेंगे. तो ऐसी एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें और क्यों जरूरी है श्रेष्ठ स्थिति बनाकर चलना वर्तमान समय. वैसे तो आप सभी अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ करते ही होंगे, लेकिन हम कुछ एक बातें अपने अनुभव के आधार से आप सभी के सामने रखेंगे. यदि आप भी उनको अपने जीवन की धारणा में लाकर प्रयोग कर चलें, तो निश्चित रूप से वैसी स्थिति बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी. क्यों जरूरी है श्रेष्ठ स्थिति बनाना? बाबा के सुंदर महावाक्य हैं, बच्चे स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, आपके अनुकूल बन जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी. क्योंकि आने वाले समय को देखते हुए विनाश की हलचल की परिस्थितियों में हम रहते हुए उनके प्रभाव से मुक्त रह सकें और एक अचल अडोल स्थिति बनाकर रख सकें, इसलिए भी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है. एक छोटा सा अनुभव कि जहां स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं. हमारी यहां आंगन में सिक्योरिटी की सेवा होती है, तो एक माता मेरे पास आई सेवाधारी, कहने लगी भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं. अब उस दिन भी मेरे को कहीं बाहर जाना था भट्टी की सेवा में, तो मैंने माता जी को कहा माता जी आप ऐसा करो, मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूं सेवा पर, आप 5 दिन के लिए 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना. बोल ठीक है. मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई, तो पूछा बोलो माता जी क्या समस्या है. तो माता जी कहती है भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है. तो समस्याएं कहां हैं, क्यों हैं? जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है. तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी. तो आपकी इस भट्टी को सफल बनाने के लिए, योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, पवित्रता की धारणा में परफेक्ट बनने के लिए, ये 3 अभ्यास सभी आज से ही रोजाना करें. यही नहीं केवल, लेकिन अपने वहां जाकर भी रोजाना करें, तो आपको एक श्रेष्ठ स्थिति बनाना, योग को पावरफुल बनाना, सहज निरंतर योगी बनना, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना, ये सारी बातें सहज और सरल होती चली जाएंगी। आज से अभी से अभ्यास शुरू कर दें, पहला अभ्यास कि आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। यहीं 50 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो जब भी जिसको भी देखें, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते हो। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आज बाबा ने मुरली में कहा, कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, ज्यादा आप जितनी बार भी कर सकते हो। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। फरिश्ता की परिभाषा तो आप सबने सुनी होगी, डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। फरिश्ता अर्थात इस देह और देह की दुनिया से जिसका कोई रिश्ता ना हो, देहिक रिश्ता ना हो, देहिक रिश्ते तो हैंगे लेकिन बुद्धि से, उन देहिक रिश्तों को निभाते हुए बुद्धि से रिश्ता ना है। दूसरा फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा, फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर चलने वाला, फरिश्ता अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो इसे उस परिभाषा को सामने रखते हुए भी हम अपने आप को जब स्वयं उस स्थिति में स्थित करेंगे, मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, तो ही आप दूसरों को सहज देख सकेंगे। तो ये तीनों अभ्यास आप रोजाना करके चलें, तो आपको वैसी स्थिति बनाना सहज और सरल हो जाएगा। वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, सहज योग लगा रहेगा। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ स्थिति बनाना जरूरी है, क्योंकि उस श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? सबसे पहली बात कि हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। जो हम बनना करना चाहते हैं, वही संकल्प, वही विचार हमारे मन के अंदर चले, बाकी सब बातों से हम अपने आप को मुक्त कर दें। क्योंकि जो संकल्प हमारे मन में चल रहे हैं, उन संकल्पों का हम निर्माण कर रहे हैं वैसा बनने का। ब्राह्मण परिवार भी, बाबा भी, प्रकृति भी, हम सभी को वैसा बनने करने में पूरी तरह सहयोगी हैं। जो बाबा ने तो कहा ही है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम हरेक अपने आप से पूछ लें कि मैं वही सोचता हूं, सोचती हूं जो मैं बनना करना चाहता हूं, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं। क्योंकि हमारे एक एक संकल्प के अंदर क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है वैसा बनने करने की। तो हमारा एक एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बाबा का बच्चा क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने अपनी क्लास में ये बात बताई, बात थोड़ी सूक्ष्म गहराई की है। जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, अब हर एक चेक करना अपने आप को, कौन सा संकल्प सारे दिन में हमारे मन में बार बार आता है। कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो पूछ ले हर एक अपने आप को कि जो मैं बनना करना चाहता हूं, वैसे विचार मेरे मन के अंदर निरंतर बने रहते हैं, ये हमने लक्ष्य तो रख लिया लक्ष्मी नारायण बनने का, बाप समान बनने का, और विचार चल रहे हो धंधे धोरी के, दुनियावी इधर उधर के, तेरी मेरी के, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसा लक्ष्य रखा है वैसा ही चिंतन, वैसे ही विचार हमारे मन के अंदर चलने चाहिए, तो ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो कैसे एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर असर डालता है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते थे, उनको कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि आप केवल 4 महीने ही जिंदा रहेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर्मन में ही नहीं आने दिया। उन्होंने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और मुझे इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो, ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है, वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है, डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे शरीर में सेल्स का निर्माण होता जाता है और पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं, नए सेल्स बनते जाते हैं। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और इस आधार से जो उसके शरीर में कैंसर के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स खत्म होते चले गए। और आज इस बात को लगभग 12 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। ताली बजाई, लेकिन आप लोगों ने जोर से नहीं बजाई है। हाँ, क्यों मैंने ये बात कही, इसके पीछे भी एक राज है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हाथ के अंदर, तो पॉइंट दबते हैं और पॉइंट दबने से ये समय थोड़ा सा ऐसा है तो कईयों को क्लास सुनते सुनते वाणी से परे चले जाते हैं, झुटका आ जाता है। तो जब पॉइंट दबेगा तो उससे क्या होगा, सुस्ती रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी, तो आप क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे, एक बात। दूसरी बात, जब ताली बजाते हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं तो पॉइंट दबने से अनेक बीमारियों का इलाज स्वतः ही होता रहेगा। यहीं पर एक व्यक्ति आया था भार्गववाला, उसने इसी बात के ऊपर 1 घंटा क्लास कराया कि ताली बजाओ और रोग भगाओ तो सभी बीमारियों का इलाज स्वतः ही होता रहेगा। तो जब आप मॉर्निंग में कोई न कोई एक्सरसाइज तो सभी करते होंगे ना, तो उस समय 2 मिनट ताली भी बजा लिया करें और 2 मिनट में 120 बार ताली बजती है तो ऑटोमेटिक सब बीमारियों से मुक्त रहेंगे। तो इस प्रकार से एक हमारे एक एक संकल्प में वो शक्ति है असंभव को भी संभव करने की। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों न आए हमारे सामने, लेकिन कभी हम अपने मन के अंदर कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो एक असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। इसलिए जो हमें बनना है करना है वो एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प अमृत वेले आंख खुलते अपने अंतर मन में भर दो, मुझे पाप समान निरंतर योगी या फरिश्ता या जो भी जिसने लक्ष्य रखा है वैसा बनना ही है। मॉर्निंग में पहले उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो और दूसरा संकल्प यही करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप अनेक कार्यों में भी और पुरुषार्थ में भी अगर निश्चय बुद्धि बनकर ये आप 21 दिन तक संकल्प कर लें तो आप फिर देखो जो संकल्प करेंगे वो होता चला जाएगा। इस पर भी एक छोटा सा अनुभव, एक भाई का फोन आया, भाई जी मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और मैंने 5 साल से बहुत बिजनेस चेंज करके देख लिए, सब में घाटा घाटा ही होता जा रहा है, मैं क्या करूं, मेरा दिल करता है, मेरे को बहुत टेंशन हो गया है, मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना, आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, निश्चय बुद्धि बनकर 9 बार ये संकल्प उठते ही करो 21 दिन तक और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, पहले दिन किया उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, दूसरा संकल्प ये किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन किया थोड़ा फायदा, तीसरे दिन किया और फायदा, चौथे दिन किया और फायदा, पांचवें दिन किया और फायदा, ऐसे करते करते 21 दिन तो पूरे हो गए हैं और उसको लगा कि इस बात में तो कुछ दम है, रिजल्ट मिल रहा है, तो क्यों नहीं अधिक समय कर लो ये अभ्यास निश्चय बुद्धि बनकर। तो उसने 3 महीने तक ये प्रैक्टिस किया अभ्यास और 3 महीने में उसको 70% प्रोग्रेस हुई। जो बिल्कुल बिजनेस घाटे में जा रहा था वो 70% प्रोग्रेस। तो इस तरह से आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर ले, मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस, ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें, सारे दिन में मन को काम दे दें, उसी नशे में रहें, उसी का अभ्यास करें। तो स्वमान से हमारे विचार महान बनते हैं और जहां विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। स्वमान के अभ्यास द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को खत्म किया जा सकता है, एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। ज्ञान योग आप सब रोजाना करते हैं लेकिन वो ज्ञान योग करने के साथ साथ जब कईयों के सामने कोई समस्या विघ्न परिस्थिति आ जाती है तो वहां कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें, क्यों सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा। ज्ञान भूला हुआ है, विस्मृत है, बुद्धि में तो है लेकिन इमर्ज रूप में नहीं है, इसलिए उसका हम फायदा नहीं ले पाते, प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए आवश्यकता है अब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान और योग का प्रयोग कर विजयी बनने का। इसलिए मैं हर बात के पीछे के अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। तो एक भाई थे, उन्होंने जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा कि फलानी डेट हुआ ना पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। वो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए तो बोले ठीक है पैसे दे दो रजिस्ट्री करा देते हैं। तो उसने 4 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, कहा आपको हम ये प्लाट नहीं ये प्लाट देंगे। साथ साथ के बराबर के प्लाट थे दोनों एक जैसे, लेकिन बात हुई थी 1 नंबर की। वो कहता नहीं 2 नंबर देंगे, बोले 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो बोल ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद ले जाना, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए उसके पैसे वापस नहीं कर रहा। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसका भी फोन आया, भाई जी मेरे सामने ऐसे ऐसे बड़ी समस्या आ गई है, मेरा योग नहीं लगता, बहुत टेंशन हो गया है, संकल्प विकल्प बुद्धि में चल रहे हैं, वो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। उनको बताया कि आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इन दोनों स्वमानों का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। इनका ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उन्होंने ऐसा प्रयोग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, बाबा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं और ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो योग करता गया करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो आप सोचिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में या बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में कितनी बड़ी शक्तियां। तो एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को भी बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इसलिए सदा हम कोई न कोई अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित होकर चले तो वहां पर असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे और श्रेष्ठ स्थिति बनाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम व्यर्थ से अपने आप को कंप्लीट मुक्त बनाए। व्यर्थ के विचार बहुतों के आगे एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसमें बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। तो व्यर्थ के संबंध में बाबा के महावाक्य हैं कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। क्यों व्यर्थ के विचार चलते हैं? जब हम अपने आप को फ्री खाली छोड़ देते हैं, मन को कोई काम नहीं देते, मन का काम है चिंतन करना, ज्ञान योग के विचार नहीं होंगे तो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा और वैसी स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए मन को सदैव ज्ञान योग के विचारों का मनन चिंतन अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन, स्टडी, ये सब चीजें पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे, जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलती है। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई को एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनके भी मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी, पता नहीं मेरे से क्या प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उनका फोन आया, भाई जी मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करेंगे, मेरे को पहली बार इंटरव्यू देने में जा रहा हूं, तो मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है, तो मुझे क्या करना चाहिए आप थोड़ा सा बताएंगे। तो हमने उन्हें बताया, आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है याद किया है वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के जाना और बताना उसका रिजल्ट क्या रहता है। और उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। गया तो पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, तो जहां दो बुजुर्ग से लोग वहां इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे, तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। तो बोले फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो बोला आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया, कॉमेंट्री पूरी हो गई है फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोला हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 4-5 मिनट का ही गीत है, गीत पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर दोबारा उसने कहा, साहब अभी गीत पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये है समर्थ संकल्पों की कमाल। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों नहीं हमारे सामने आए, लेकिन कभी हम अपने मन के अंदर व्यर्थ कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं, तो निश्चित रूप से जो आप सोचेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। और सृष्टि स्थिति बनाने के लिए हम अब ऐसे अनुभव सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि भाई छोटी मोटी समस्या कईयों के सामने होती है, हम भी प्रयोग करें हैं, जरूर प्रयोग करो। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को आप अपने पहले जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात जो मैं बताई पहले भी कि हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। दो घंटा बैठ के दो घंटा कर्म करते हुए अमृत वेले से रात्रि तक। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना बहुत जरूरी है। जितने भी दिन हम योग करें, एक ही समय रोजाना योग करें, एक ही स्थान पर बैठ के योग करें। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें। कहीं मान लो दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता हूं, कहीं कोई अशांति की समस्या है तो मैं पीस हाउस आत्मा हूं, शांति का अवतार हूं, या माना जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। और पांचवी बात है पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, क्योंकि समस्याओं में विजयी बनने के लिए शक्तिशाली स्थिति का होना जरूरी है, अर्थात हमारा योग पावरफुल हो। और पावरफुल योग कैसे होगा, जो मैंने तीन अभ्यास बताए सभी हैं, वो सभी अभी से ही रोजाना करके चलें तो आपका योग बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और स्थिति भी शक्तिशाली बन जाएगी। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी बनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बात समान बने, निरंतर योगी बने हैं। अब ऐसा संकल्प करने में तो कुछ खर्चा तो नहीं लग रहा, मेहनत भी नहीं है, लेकिन इसके लिए चाहिए बड़ा दिल, विशाल दिल, ज्ञान योग का बल आत्मा में इमर्ज रूप में होना चाहिए, तभी आपके मन में निरंतर सबके प्रति शुभ भावनाएं रह सकेंगी। अन्यथा देखने में आता है कि गलत व्यवहार को देखकर ज्यादातर लोगों की भावनाएं बदल ही जाती हैं। ये तो हुआ ज्ञान कि सबके प्रति शुभ भावना रख के चलो, लेकिन एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, तंग करता है, विघन डालता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? रहती है शुभ भावना या बदल जाती? ज्यादातर लोगों की बदल जाती है, बहुत थोड़े लोग कहते हैं कि रहती है। तो देखो ये नियम है, यदि हमारे मन की भावनाएं बदल गई नेगेटिव व्यवहार को देखकर, तो उस आत्मा के पास भी, हमारे मन में नेगेटिव भावना उत्पन्न होती है तो वो हमारी नेगेटिव भावनाएं उस आत्मा के पास सूक्ष्म में वाइब्रेशन स्वरूप में पहुंचती है और वो आत्मा भी नेगेटिव भावनाओं को पाकर वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी और उसकी नेगेटिव भावनाएं हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगे। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार क्यों नहीं करे हमारे प्रति, लेकिन हमें अपना नियम बना लें कि मुझे सदा ही अपने मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलनी है। तो जहां हमारे मन में निरंतर सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, तो उनमें भी इतनी बड़ी शक्ति है कि उनके द्वारा एक कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता, वो शुभ भावना, शुभ कामनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। एक अनुभव, आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, विघ्न डालते हों, रुकावट डालते हों, कई ऐसे भाई हो सकते हैं जिनके युगल ज्ञान में नहीं चलते, वो विघ्न डालती होंगी या ज्ञान में चलने से रोकते होंगे, तो ऐसी आत्माओं की मनोवृत्तियों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए यह अनुभव। एक भाई थे, उनका बड़ा बिजनेस था, बाबा के ज्ञान में चलते थे तो, लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। लेकिन बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था तो सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे, लेकिन ऐसे कब तक, ज्ञान में चलना कोई दो चार दिन की तो बात नहीं है। तो तीन साल पहले की बात है, वो भाई मधुबन आए मावा से मिलने के लिए। यहाँ एक रात ऊपर भी पांडव उनमें रुके, क्लास के बाद हमारे से मिले और उन्होंने यही प्रश्न किया कि भाई जी मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि अगर आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो तो दो बातों का पालन करके चलना आज से ही बहुत जरूरी है। पहली बात, चाहे वो आपका कितना भी विरोध करे लेकिन आपने अपने मन में जरा भी उसके प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखनी है, सदा ही शुभ भावना शुभ कामना रख के चलनी है। और दूसरा कि ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है, क्या करना है, वो मैं बतला रहा हूं कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है। तो जिस भी आत्मा को हम बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको सूक्ष्म में इमर्ज कर अमृत वेले योग में और उसको शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन दो। क्या वाइब्रेशन दो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से शुभ भावनाओं के रूप में उससे बातें करो। ऐसे मैंने उनको बताया कि आप 7 दिन अपनी युगल को इमर्ज कर सूक्ष्म में लाइट के रूप में उससे शुभ भावनाओं के रूप में बातें करना। तो जब अमृत वेले हम सभी का अंतर्मन शांत होता तो जिस भी आत्माओं को हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे तो वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर्मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा। और जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर आप वैसे करेंगे। ये है इसका विधि सिद्धांत तरीका, इसलिए प्रयोग अमृत वेले ही करना है। और मैंने बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो भाई मधुबन से गए और जाने के बाद अपने घर जाकर अमृत वेले उठकर योग में और अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उसमें बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 7 दिन प्रयोग करना था लेकिन 2 दिन ही प्रयोग किया और 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्टी थी। तो उसने सोचा आज तो योग की भट्टी है तो योग की भट्टी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, है तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उसे पता चल जाएगा कुछ शुभ भावनाओं के प्रयोग का असर हुआ या नहीं है। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्टी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। तो जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी किन्नों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो ये प्रयोग भी करके आप देख सकते हैं। और सृष्टि स्थिति बनाने के लिए हम बातों को महत्व नहीं, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलें। क्योंकि देखो अनेक जन्मों का अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब है तो सब चुकते होने के लिए तो आना ही है। और कईयों के सामने आपने देखा होगा जैसे ही ज्ञान में चलते हैं पहले सब कुछ ठीक था, जैसे ही ज्ञान में चलने लगे तो बहुत सारे विघ्न समस्याएं आने लगी। तो कई सोचने लगते हैं पता नहीं ज्ञान में चलने के कारण तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है और समय थोड़ा है, पता चला ज्ञान मिला तो हिसाब किताब चुकते होने के लिए जल्दी जल्दी आएगा है? ताकि इसी जन्म में हम पूरा करके और फिर निश्चिंत होकर बाबा के साथ वापस घर जा सके। तो इसलिए हम कुछ भी करने से या कहने से हिसाब किताब या समस्या आने से रोक नहीं सकते। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें किसी बात के कारण में नहीं जाना है, हर बात का निवारण करके चलना है। समस्या को सामने नहीं रखना लेकिन समाधान स्वरूप बनकर चलना है। बाबा ने हमको हर बात का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर मुरलियों में बताया हुआ है। इसलिए हम बातों को महत्व नहीं दें, क्यों ये समस्या आ रही है, इसने ऐसे क्यों कहा, नहीं, हम अपना इंतजाम कर ले हैं। देखो बरसात आती है तो हम ये थोड़ी संकल्प करते हैं क्यों बरसात आ रही है, हम अपना इंतजाम कर लेते हैं, रेनकोट छाता ले लिया, बस छुट्टी होती रही बरसात, कोई उसका प्रभाव नहीं हमारा। तो ऐसे हम समस्या आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, हम अपना इंतजाम कर लें तो सब सेफ रहेंगे। तो जहां हम बातों को महत्व देते हैं, क्या है बातों को महत्व देना कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये है बातों को महत्व देना। उस बात को पकड़कर बैठ जाना। अब दूसरे को तो आप बदल नहीं सकते जब तक वो व्यक्ति ना चाहे बदलना, और हम उस क्या क्योंकि बात कोई पकड़ कर खड़े हुए हैं कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, और समय तो ऐसा ही पूरा होने को जा रहा है, यदि क्या क्योंकि व्यर्थ की बातों में ही हम उलझे रहे तो एक बहुत वैल्यूएबल समय को ऐसे ही वेस्ट कमा देंगे। इसलिए बातों में नहीं जाना है, हैं? बातों को महत्व नहीं देना, लेकिन बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलना है, हैं? तो वहां सब कुछ ठीक हो जाता है। जी हाँ, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलते हैं। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक युगल थे, एक उनका बच्चा था, तीनों ही ज्ञान में चलते थे, बहुत ही अच्छे ज्ञानी योगी पुरुषार्थी, आत्मा घर का वातावरण भी बहुत अच्छा था। तो चलते चलते वो माता के मन में धीरे धीरे एक प्रश्न उठने लगा कि हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, घर को कौन संभालेगा, तो घर में बहू होनी चाहिए। लड़का बड़ा था तो लड़के को बोला बेटा आप शादी करो, लड़के ने मने कर दिया, एक बार कहा, दो बार कहा, मने कर दिया, तो तीसरी बार माता जी कहती है कि यदि आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो यही बात माता जी ने जब दो तीन बार बोली तो फिर लड़के का संकल्प चलने लगा कि भाई मेरे कारण माता जी आत्महत्या करे तो चलो ठीक नहीं है, माता जी ने इतनी पालना की, योग बनाया, बड़ा किया, तो माता जी की बात मान लेते हैं। तो लड़के ने शादी कर ली तो जो घर में बहू आई और बहुत ही तेज और तराट, बस उसी दिन से सास बहू का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, रोजाना का लड़ाई झगड़ा होने लगा। माताजी बड़ी परेशान, जितना सुख शांति थी घर में सब दुख और शांति में बदल गई। तो माताजी लड़के को कहती है कि बेटा आप इसको समझाओ बहू को। तो लड़का कहता है माताजी मेरे को तो बहू की जरूरत थी नहीं, बहू तो आपको चाहिए थी, अभी आप उसका सुख लो, है क्यों कुछ नहीं जबरदस्ती कह के शादी कराए। तो माताजी बड़ी परेशान, तो क्या करे। तो क्लास के बाद आपस में मिलते हैं तो किसी को अपनी समस्या बताई माताजी ने, है भाई जी मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई, मैं क्या करूं। तो किसी ने हमारे योग के प्रयोग का क्लास सुना होगा तो उन्होंने हमारा नंबर दे दिया माताजी को। माताजी का फोन आया, भाई जी मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई, मैं क्या करूं, कोई हल बताओ। तो माताजी को जो हमने हल बताया वो हम आज सबके साथ लागू होती है, वो बात केवल माताजी की बात नहीं, हम सबके सामने जो भी विघ्न परिस्थिति समस्याएं आ रही हैं, वास्तव में उनका कारण कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं। वो मेरे ही कर्मों का फल है, मेरे ही कर्मों का परिणाम है, और मुझे ही चुकतू करना है। अभी आप दुखी होकर चुकतू करो या खुशी खुशी से चुकतू करो, चुकतू तो आपको ही करना है, तो फायदा किसमें है, खुशी खुशी चुकतू करने में है ना। तो अब तक दो तरीके तो आप लोगों ने सुने होंगे हिसाब किताब चुकतू करने के, सबसे सुंदर तरीका तो है योग बल जमा करो। साधारण योग से हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे, योग बल अर्थात पावरफुल शक्तिशाली बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का योग चाहिए, उससे ही विकर्मों का विनाश होगा, उससे ही हिसाब किताब चुकतू होगा। साधारण योग से विकर्म विनाश नहीं होता, साधारण योग से संस्कारों का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई लोग बहुत साल से पुराने पुराने ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ज्ञान में आए थे आज भी वैसे की वैसे ही है। क्यों? जीवन में प्रोग्रेस उन्नति नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं कि वो नियम धारणाओं में नहीं चल रहे, मुरली नहीं सुनते, योग नहीं करते, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन योग साधारण है, इसलिए संस्कार परिवर्तन नहीं होते, विकर्मों का विनाश नहीं होते और पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आ पाती, पुरुषार्थ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए हम अपने योग को पावरफुल बनाएं, और योग को पावरफुल बनाने की तरीका मैंने जो तीन अभ्यास शॉर्ट में बताए वो आप सभी करके रोजाना चलें, तो आपका योग जहां पावरफुल होगा तो उससे संस्कारों का परिवर्तन होगा, विकर्मों का विनाश होगा, हिसाब किताब चुकतू होगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने माताजी को कहा कि माताजी आप एक प्रयोग करो। माताजी को बताया कि आप एक प्रयोग करो तो जो आत्मा आपके, देखो बिना हिसाब किताब के तो कुछ होता नहीं है, तो जो आत्मा आपके घर में बहू बनकर आई है तो जरूर उस आत्मा को कोई न कोई जन्म में आपने तंग किया होगा, दुख दिया होगा, तो बदला लेने के लिए आपके पास आई है, क्योंकि बिना कर्म के हिसाब किताब के तो कुछ होता नहीं है ना। तो हमने उन्हें यही बताया कि अभी आप एक प्रयोग करो, तो अपनी बहू को यदि आप परिवर्तन करना चाहते हो तो एक तो आज से ही अपने मन में उसके प्रति कंप्लीट शुभ भावना शुभकामना रख के चलो, और दूसरा कि आप उस आत्मा को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर। दो तरीके जो मैं बता रहा था, एक तरीका तो बताया हिसाब किताब चुक करने का, सबसे सुंदर तरीका तो योग बल, और दूसरा तरीका है अगर योग नहीं तो फिर दूसरा तरीका है शारीरिक कर्म भोग बीमारी आदि से भी हिसाब किताब चुक होते हैं। लेकिन एक तीसरा भी तरीका जो अभी मैं बतला रहा हूँ, तीसरा तरीका यही है कि जो आत्मा आपके सामने विघ्न डाल रही है, रुकावट डाल रही है, विघ्न पैदा कर रही है, उसके साथ आपका कर्म का हिसाब किताब है, तो उस आत्मा को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे मनी मन 7 दिन योग में माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। तो मिनका आप अपनी बहू को 7 दिन योग में इमर्ज कर सूक्ष्म में लाइट के रूप में उससे मनी मन क्षमा मांग लो, माफी मांग लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस माता जी ने ऐसे प्रयोग किया, अपनी बहू को इमर्ज कर अमृत के लिए योग में सूक्ष्म में लाइट के रूप में उससे 7 दिन माफी मांगी, क्षमा मांगा। और फिर 8वें 9वें दिन माता जी की बहू माता जी के पास आती है और कहती है कि माता जी मैंने आज तक आपको बहुत दुख दिया, तंग किया, लेकिन आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर रहेंगे, सब कुछ ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ऐसी किसी के सामने कोई समस्या परिस्थिति हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और सृष्टि स्थिति बनाने के लिए हम अपनी बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रखकर चलें, अपनी बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रख के चलें, क्योंकि जहां लाइन क्लियर होगी तो बाबा से पावर आती रहेगी है? और कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे। अगर लाइन क्लियर नहीं है बाबा के साथ तो कोई भी समस्या परिस्थिति आई तो उसे देखकर वहां प्रश्न उठेगा, क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें, क्यों सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि बुद्धि दूसरी बातों में एंगेज है, बिजी है। बाबा तो टचिंग दे रहा है लेकिन हम बुद्धि दूसरी बातों में एंगेज होने के कारण उसे कैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए वैसा करने में सफल नहीं हो पाते, फिर प्रश्न उठता है क्या करें या कैसे करें। तो बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे रहेगी सदैव, ताकि हम समय समय बाबा से टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सकें। बातें तो बहुत हैं लेकिन दो मुख्य बातें बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए, बुद्धि का एक तो स्वच्छ और पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्रता के सागर भाप के साथ हमारा योग है ना, उससे प्रॉपर योग लगाने के लिए बुद्धि का स्वच्छ पवित्र होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अब वापिस घर जाने का समय आया है, इसलिए सभी प्रकार के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बन जाएं। कभी भी कहीं किसी को जाना होता है तो क्या करते हैं, जो भी जरूरी सामान है वो बैग अटैची वगैरह में पैक करके रख लेते हैं और टाइम हुआ रग उठाया चल पड़े हैं। तो वो तो हुई स्थूल विस्तार को सूक्ष्म करने की बात, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं बुद्धि के विस्तार को। अगर बुद्धि देखो एक है और थोड़ा सा अपनी देह में, थोड़ा सा देह के संबंधों में और कारोबार में है और बातों में उसी वो लगी रहेगी, तो जितना और बातों में लगी रहेगी उतना बाबा से कमी हो जाएगी। इसलिए विस्तार करो, लेकिन उतना विस्तार करना है कि वो विस्तार हमारी बुद्धि तो बाबा से बुद्धियोग तोड़ने का कारण ना बने। जब चाहे उस विस्तार से हम अपनी बुद्धि को निकालकर सार स्वरूप बन सके, तो बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। तो हम सभी स्वच्छ और पवित्र तो बने हैं, लेकिन पवित्रता में संपूर्णता आ जाए उसमें हरेक नंबरवार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता, इस संबंध में अव्यक्त बाप दादा ने मुरलियों में 7 बातें बताई है। उन 7ों बातों को सामने रखते हरेक अपने आप को चेक कर लेना कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी, और हम जो जिस समय जो करना है वही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। तो पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता, खाने की, रहने की, पहनने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की यदि स्वच्छता है, सफाई है, तो उससे बुद्धि रूपी पवित्रता को मेंटेन करने में, बढ़ाने में आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलना ही संपूर्ण पवित्र आत्मा के लक्षण है। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मोटे मोटे पांच विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना सूक्ष्म में, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो क्या है बाल बच्चे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, नफरत, सुस्ती, आलस्य, परचिंतन, नेगेटिव चिंता, माना जो भी नेगेटिव बातें हैं, अगर उनमें से एक भी हमारे अंदर है तो वो भी अपवित्रता की लिस्ट में गिनी जाएगी। तो उससे भी मुक्त तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, एक व्रता, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। पांचवा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, एक साकार मुरली में बाबा ने बताया, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। छठा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा ही समर्थ विचारों का स्वरूप बन के चले, शक्तिशाली विचारों का। और सातवां स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को सामने रखते हुए हरेक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन निरंतर बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी। और जहां बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे, तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्टी कराने, तो जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां उस दिन कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। हम भी पहुंचे तो हमारे को भी कहा वापिस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब ये तो बड़ी समस्या आ गई भाई, वहां नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहां भट्टी रखी है और 200-250 लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, और ये कहते हैं वापिस जाओ। तो एक बड़ी समस्या हो गई ना, तो अभी क्या करें। तो मैंने वहां खड़े खड़े थोड़ा साइड को होकर और बाबा का आह्वान किया, बाबा से कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी बात बताई, बाबा अभी देखो हम आपके सेवा में जा रहे हैं, नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहां भट्टी रखी है, 250 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हम यहाँ नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं तो मिलिट्री वालों ने एक ये कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो हम किसी को नहीं जाने देंगे। अब मेरे को क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा है। ऐसे 2-3 मिनट बाबा को सारा समाचार बता के दिल से याद कर कहा। 3 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिलती है कि बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है, तो एक भाई वहां के हमारे साथ थे, हम दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था, तो हम दोनों गए और उस भाई ने कहा साहब हम माउंट आबू से, ये भाई हमारे साथ माउंट आबू से आए हैं और इनके लिए हमारे नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, तो वहां इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा है, 250-250 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए? हाँ जी। अच्छा अच्छा फिर तो कोई बात नहीं, जाइए। तो 2 मिनट पहले जहां ना हो गई, 2 मिनट के बाद कैसे यहां हो गई? क्योंकि कैसे यहां हुई, बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच कर वैसा करने में सफल हो गए। तो इस तरह से आपकी बुद्धि की लाइन यदि बाबा के साथ क्लियर है तो ये निश्चित है कि आपके लिए दुनिया की सभी लाइन क्लियर ही मिलेंगी, कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, कहीं प्रश्न नहीं उठेगा। है? अभी हम थोड़े दिन पहले उड़ीसा गए थे कटक भट्टी कराने, तो वहां से भुवनेश्वर आए, एक क्लास कराने थे, वहां से पुरी जाना था। तो रास्ते में जा रहे थे तो शॉर्टकट रास्ते से सिंगल रोड था, तो बहन जी ने कहा कि एक बोल जल्दी है थोड़ा तो शॉर्टकट रास्ते चलना है। ठीक है जी चलो, दो बहने टीचर बहन है, एक माता और दो हम भाई जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ा, तो गांव में जैसे ही क्रॉस करने लगे दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया, गाड़ी से टकरा गया। मैंने कहा बाबा इसको बचाना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। है तो वो तो बच गया लेकिन मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, हंगामा करने लगे, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली, कहते पैसे देकर जाओ, ये है वो है। तो हमने कहा भाई अब गलती किसी की वो, लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है तो मेजोरिटी वो थे। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं और आप दुकान पे चलिए, आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते हैं। नहीं नहीं हमारे को पैसे ही चाहिए और पैसे बहुत मांग रहे। अभी इस समस्या का समाधान करते करते आधा घंटा हो गया, हमको ऐसे ही देरी हो रही है, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो फिर मैंने वहां भी यही प्रयोग किया, थोड़ा सा वहां से हटके और बाबा का आह्वान किया। मैंने कहा बाबा देखो अभी हम आपकी सेवा पर जा रहे हैं और ये लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो आप जानते हो, आप आओ और इस समस्या का समाधान कराओ। ऐसे मैंने बाबा को 2 मिनट याद कर और आह्वान कर कहा। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो जो माता हमारे साथ थी उसको टचिंग मिली और उसको फोर्स आया और वो सबके सामने आके जोर से बोलने लगी कि मेरी गाड़ी है और मैं आप लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी, जिसको चलना है पुलिस थाने चलो, जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। और देखो इस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पियो है या शराब पी के गाड़ी चला रहा है, इसलिए हम एक पैसा भी नहीं देंगे। अब शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है, अगर वो गए पुलिस में तो उनको अंदर करेगी पुलिस। ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो कहने लगे भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाओ। ये है बाबा की कमाल। तो जहां भी आप रहो, कहीं भी जाओ आओ, कुछ भी करो, लेकिन बाबा को साथी बनाकर चलो, उसका आह्वान कर लो, उसके साथ बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलो। तो निश्चित है अगर आपकी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम सदा ही कहीं भी जाएं आएं कुछ भी करें, एक तो जो मैंने बताया सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें, और दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, सदा बाबा को साथ ही बनाकर चलो। बाबा ने खुद कहा बच्चे मैं आया ही तुम्हारे लिए हूं, मेरी सर्वशक्तियां तुम्हारे लिए हैं, तुम उन्हें यूज करो, लाभ लो, फायदा उठाओ। और बाबा ने यह भी कहा है बच्चे कोई विघ्न परिस्थिति क्यों नहीं तुम्हारे सामने आए, यदि तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सुने हैं ना बाबा के महावक। तो इतनी बड़ी ऑफर जब भगवान हमें दे रहा है तो क्यों नहीं हम उसका फायदा लें। कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो। तो आप वो अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। कोई ऐसी सेवा आपको दे दी जाए जो कभी आपने की नहीं हो तो आप सोचेंगे ना मैं कैसी ये सेवा करूंगी है? लेकिन यदि आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया तो बाबा आपसे वो सेवा करवा लेगा, ये निश्चित है। इसलिए कभी भी बाबा की सेवाओं में ना नहीं करना, सदैव हां जी का पाठ पक्का करके चलना है। तो जहां पर सर्वशक्तिवान भगवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो कैसे एक असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, एक अनुभव। हम नई नई मधुबन निवासी बने थे, लगभग 1 साल ही हुआ था, 34 साल हो गए मुझे यहां, 35 साल हो गए समर्पित हुए। तो उस समय तो ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ नहीं बना था, जो था मधुबनी था, सभी दादियां यहां रहती थी। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों पर क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को कहा कि दादी ने कहा आपको भाषण करना है, अब उसके पहले हमने तो 2 शब्द भी किसी के आगे खड़े होकर नहीं बोले थे। अब दादी ने कहा तो हमने ना भी नहीं किया, हां भी नहीं किया, चुपचाप सुन लिया। और मैं बाबा के कमरे में गया कि बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूंगा है। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो, हाँ इनका ये बात तो सही है, इसका मतलब हमने कल पहले भाषण किया सफलता पाई है तो फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है, तो थोड़ा सा शक्ति आ गई। और ये भी याद कर बाबा को कहा कि यदि कुछ नहीं भी आएगा तो बाबा को याद कर कहेंगे बाबा आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, ऐसे सोचकर हम तैयार हो गए हैं। तो प्रोग्राम ऐसा था कि टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे, कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगे, उसी समय आओ चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। अब तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। और उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो है वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए है। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सीजन के समय की बात थी, पहले तो यहीं सीजन होता था ना। तो और सब दादे दादियां आगे बैठे हैं जिनको बोलना नहीं आता, वो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नए, क्योंकि उनको सिखाना है इसलिए ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया गया, भाषण करना क्लास कराना सिखाना है। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, उनमें से एक हम भी थे। तो 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया, हम भी गए चिटकी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि भाई इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक है। अच्छा माइक के आगे खड़े हैं, सोचने का भी टाइम नहीं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो लोग हंसी उड़ाए, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद कर करके बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कहकर बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें 1st नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं किसको 2 शब्द बोलना नहीं आता और 1st नंबर आ जाए, इतना अच्छा भाषण कर जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से निश्चय हो गया भले हमारे को कुछ भी नहीं आता हो, यदि हम बाबा को साथी बना के चले तो हमारे लिए हर असंभव कार्य संभव होता चला जाएगा। और उस दिन के बाद हमारा क्लास कराने का, भाषण करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। इस प्रकार से बातें तो बहुत है, अनुभव भी बहुत है, लेकिन अभी टाइम हुआ है तो इसलिए हम पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से इन कुछ एक बातों को आप अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलो तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, कर्म होगा वैसा फल पाओगे।